आदम ने अपनी पत्नी का सहचर्य और परमेश्वर की संगति का आनंद उठाया। उसका कार्य संपूर्ण हो रहा था। उसका पूरा जीवन आशीष और आनंद से भरा हुआ था। परंतु जल्द ही आदम इस अलग दुनिया में अपना जीवन बनाने के लिए संघर्ष करने लगा। पुरुष और स्त्री उस जगह से बाहर थे जिस जगह में परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया था, जहां की कोई वापसी नहीं थी। उन्होंने पीड़ा, भय और अपराध बोध का अनुभव किया और वे दोबारा कभी परमेश्वर को नहीं देख पाए। कुछ बहुत गलत हो गया था। उत्पत्ति 3 हमें इसकी कहानी बताती है। 17:2 श्राप। अपनी बाइबल में उत्पत्ति 3 खोलें। बाइबल हमें बुराई की उत्पत्ति का पूरा विवरण नहीं देती है, परंतु ये संकेत देती है कि शैतान एक दूत था जो गर्व से भर गया और परमेश्वर के स्थान को हड़पने की कोशिश की। शैतान के विद्रोह के कारण उसे परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर दिया गया और पृथ्वी पर उतार दिया गया। अतः शुरुआत से ही मानव जाति की कहानी में शत्रु परमेश्वर के कार्य को नष्ट करने पर तुला हुआ था। इस शत्रु को शैतान, दानव या झूठ का पिता के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है। उसने अपने विद्रोह में मानव जाति को सम्मिलित करने का प्रयास किया और उसका पहला उद्देश्य पुरुष और स्त्री को बुराई के अनुभव का परिचय कराना था। एक अच्छा प्रशिक्षक अपने प्रतिद्वंद्वी के खेल को ध्यान से समझता है ताकि वो एक प्रभावी रक्षा की योजना बना सके। शैतान ने बगीचे में अपनी सर्वश्रेष्ठ नीति का उपयोग किया और एक बार जब आप इन षड्यंत्र को समझने लग जाएंगे तो आप उनके खिलाफ बचाव करने में सक्षम हो जाएंगे। शैतान की पहली चाल प्रश्न पैदा करना था। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? परमेश्वर ने एक सरल निर्देश दिया था और शैतान की पहली चाल उस पर सवाल उठाना था। परमेश्वर के कथन पर सवाल उठाकर शैतान ने पुरुष और स्त्री के लिए प्रभु के आदेश की अवहेलना करना आसान कर दी। जब भी शैतान आपको पाप करने के लिए लुभाता है तो उसकी पहली रणनीति आपके भीतर भ्रम पैदा करने की होती है। वो ये सुझाव देकर आपके बचाव को कम करने की कोशिश करता है कि शायद आप जो पाप करना चाहते हैं वो वास्तव में परमेश्वर द्वारा निषिद्ध नहीं है, या फिर कम से कम यह कि बाइबल में इस बारे में स्पष्ट रूप से लिखित नहीं है। फिर उसकी दूसरी चाल अनुमान लगाना होती है। परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पाप का परिणाम मृत्यु होगी, परंतु शैतान स्त्री को सुझाव देता है कि पाप के परिणामों को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, तुम निश्चय ना मरोगे। यह देखना मुश्किल नहीं है कि यह रणनीति कहां जा रही है। वो चाहता है कि स्त्री परमेश्वर की कृपा को मान ले। आखिरकार परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, वह कह रहा है, तो वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा कैसे होने दे सकता है। जब शैतान आपको पाप करने के लिए लुभाता है तो वो आपको ऐसा सुझाव देकर आपकी सुरक्षा कम कर देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं और आप इस पाप से बच सकते हैं और इसका आपको कोई दुष्परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। उसकी तीसरी चाल महत्वाकांक्षा पैदा करने की होती है। आदम और हव्वा परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे, परंतु शैतान उसको सुझाव देता है कि वे अब और बेहतर हो सकते हैं। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यह दुश्मन की सबसे चलाक रणनीतियों में से एक है। उसे यह सुझाव देना बहुत पसंद है कि हमें परमेश्वर का स्थान लेना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, बल्कि इसलिए कि वो परमेश्वर से बहुत गहरी घृणा करता है। वो हमारे अहंकार को आमंत्रण देता है जब वो हमें ये सुझाव देता है कि कुछ भी अच्छा या बुरा जानने के लिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। उसका संदेश आज भी वही ही है। आप अपने खुद के भगवान हो सकते हैं। आप खुद ही तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। परमेश्वर का पहला नियम उनकी सभी आज्ञाओं की तरह उनके प्रेम की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। परमेश्वर ने हर चीज भली बनाई, और जब उन्होंने आदम से कहा कि वो इस पेड़ से ना खाए, तो ये उसकी सुरक्षा के लिए ही था। आदम, तुम पहले से ही भलाई के बारे में जानते हो, परंतु तुमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि इस ब्रह्मांड में एक और वास्तविकता है जिसे बुराई कहा जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी इसका अनुभव करो, इसलिए इस पेड़ से मत खाना। परंतु आदम और हव्वा को लगा कि उन्हें बुराई का ज्ञान भी होना चाहिए, और तभी से हम सभी इस बुराई के ज्ञान के साथ जी रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बुराई का कोई स्थान नहीं है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को नियुक्त कर दिया। आदम और हव्वा परमेश्वर के आशीषित स्थान से बाहर थे। उनका उत्तम विवाह तनावपूर्ण हो गया और उनका कार्य निराशाजनक हो गया। उन्होंने दर्द, भय और खोने का अनुभव किया, और मृत्यु एक भयानक वास्तविकता थी जिसे वो कभी ना टाल सके। सबसे बुरा ये हुआ कि वे परमेश्वर से विमुख होकर इस पृथ्वी पर अकेले हो गए। स्वर्ग उनसे छूट गया और वापसी का कोई रास्ता नहीं था। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बाहर निकालने के बाद जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आगे पीछे घूमने वाली ज्वाला में तलवार परमेश्वर के न्याय को बताती है। इसके आसपास रहना असंभव था। यह दृश्य आदम के लिए भयानक रहा होगा। बाइबल के अनुसार मानव स्थिति का मूल्यांकन यह है कि हमें बुराई का ज्ञान है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर दिया गया है, और हम बुराई के इस ज्ञान से कभी मुक्त नहीं हो सकते, और हम परमेश्वर के स्वर्ग में कभी वापस नहीं जा सकते हैं। यह मूल्यांकन है तो इलाज क्या है? आशा की शुरुआत उस दिन हुई जिस दिन हव्वा और आदम ने पाप किया, और ये एक अभिशाप के साथ शुरू हुई। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू श्रापित है। ये अभिशाप एक देवता का कथन है जो किसी व्यक्ति या चीज के विनाश के लिए भेजी गई है। इसलिए जब परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया तो वो घोषणा कर रहे थे कि बुराई कभी खरी नहीं रह सकती, शैतान के पास अंतिम शब्द नहीं होगा। आदम और हव्वा इस खबर को सुनकर उल्लासित हो गए होंगे। हम परमेश्वर का बुराई को अभिशाप देने के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। इस अभिशाप के बिना हम बुराई के ज्ञान के साथ हमेशा के लिए अटक सकते थे, परंतु इस श्राप ने हमारे लिए आशा के द्वार को खोल दिया। यदि परमेश्वर बुराई का विनाश ना करते तो कौन कर सकता था? आज तक के मानव इतिहास में हमने कोशिश की है और असफल रहे। हमारे समाचारों में हिंसा और दुर्व्यवहार का ही बोलबाला बना हुआ है। हमें इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। परंतु परमेश्वर ने शैतान से कहा, तू श्रापित है, और उसी घड़ी से ही हमारे शत्रु को अंतिम विनाश के लिए भेज दिया गया। उसके पश्चात परमेश्वर ने दूसरे श्राप की घोषणा की। पुरुष की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, श्रापित। आदम ने भय के कारण अपनी सांस को ही रोक लिया होगा। परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया था और अब इस खौफनाक शब्द को बोलते वक्त वे सीधे आदम को देख रहे थे। आदम ने सोचा होगा कि वो पूरी तरह से नष्ट होने जा रहा है, परंतु वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। बजाय इसके कि परमेश्वर उसको ये बोले कि आदम तुम श्रापित हो, उन्होंने कहा, भूमि तेरे कारण श्रापित है। यहां हम परमेश्वर के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज की खोज करेंगे जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा करी कि वो बुराई को नष्ट कर देंगे, परंतु साथ ही वो शराब को फेर देते हैं ताकि शराब धरती पर पड़े और सीधे पुरुष या स्त्री पर ना पड़े, ताकि उनके और परमेश्वर के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए जगह बन सके। परमेश्वर न्यायप्रिय है और श्राप को कहीं और जाना चाहिए, इसलिए सही समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उन पर हमारे सभी पापों के श्राप को लाद दिया। और यही सब कुछ है क्रूस के बारे में। मसीह खुद श्रापित हो गए हमें इस श्राप के व्यवस्थान से छुड़ाने के लिए। एक दिन मसीह की जीत का प्रभाव पूरे ग्रह को बदल देगा। श्राप को धरती की ओर रुक करके परमेश्वर ने सृष्टि को हताशा का शिकार बनाया, परंतु साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। और तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एरी को डसेगा। कुल मिला के दुश्मनी बुराई के विरुद्ध एक कठोर युद्ध है जो कि मानव जाति के इतिहास में पीढ़ियों से चला आ रहा है। हम हमेशा बुराई से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, परंतु हमें सिवाय हताशा, दर्द, बीमारी और मृत्यु के कुछ हासिल नहीं होता। हम बुराई के ज्ञान में अटके हुए हैं, परंतु परमेश्वर वादा करते हैं कि एक उद्धारक आएगा और बुराई के खिलाफ एक महान संघर्ष में शामिल होगा। वह एक घातक प्रहार करके दुश्मन के सिर को कुचल देगा और इस प्रक्रिया में दुश्मन उसकी एड़ी को काट देगा जिसने उसे कुचल दिया था। कल्पना कीजिए कि आप एक विषैले सांप के सिर पर खड़े हैं। वो आपको काटता है और एक घाव देता है, परंतु फिर आपका घायल पैर सांप को जोर से नीचे दबाता है और उसका विनाश कर देता है। इसी प्रकार से अपनी मृत्यु के माध्यम से मसीह ने दुश्मन पर एक घातक घाव किया और पुरुष और स्त्री के लिए उसकी ताकत से बाहर आने का रास्ता खोला। मसीह स्वर्ग से आए न सिर्फ बुराई की शक्ति पर काबू पाने के लिए, बल्कि हमारे लिए स्वर्ग में वापसी का रास्ता भी खोलने के लिए। कल्पना करने की कोशिश करें कि आप परमेश्वर के स्वर्ग के बाहर खड़े हैं, करूबों और न्याय की ज्वलन तलवार को वापस देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कोई परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आता है और आपके साथ खड़ा हो जाता है। फिर वो पलटकर ज्वलन तलवार की ओर बढ़ता है और जैसे ही आप देखते हैं, आप उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। ज्वलन तलवार आगे पीछे चमकती है और आप देख सकते हैं कि जब वे वहां जाएंगे तो उनका क्या हो सकता है, परंतु वो लगातार अथक रूप से आगे बढ़ते रहते हैं। तलवार उन पर हमला कर उन्हें मार देती है, इससे उनका शरीर टूट जाता है, परंतु उनके शरीर को तोड़ने में तलवार स्वयं टूट जाती है और भूमि पर बिखर जाती है। उनकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष का रास्ता आपके लिए वापस से खुल गया है। आइए हम देखते हैं आज हमारे लिए क्या प्रकाशित हुआ। हम केवल तभी अपनी दुनिया का एहसास करना शुरू कर सकेंगे जब हम ये समझ जाएं कि हम इस दुनिया में बुराई के ज्ञान के साथ रहते हैं और हमें परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर किया गया है। परंतु परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है। बुराई के साथ चल रही हमारी इस लड़ाई में उसने अपने पुत्र को भेजा। क्रूस पर अपनी मृत्यु के माध्यम से उन्होंने शत्रु की शक्ति को तोड़ दिया और परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष में एक नया और जीवित रास्ता खोल दिया।